پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کین وان. ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے, جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. اور انہی پیجز پر آپ ہمارے مہمانوں کے لیے سوال بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہوتا ہے 0800-777-89. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا کی ڈائریکٹر ایڈمیشنز فاخرہ تبسم عباسی. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی, جنہوں نے امریکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا, اسی شعبے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنانے کے بعد ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم فاخرہ تبسم عباسی صاحبہ.
وعلیکم السلام مس یاسمین صاحبہ,
بہت شکریہ ہمارے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. گفتگو کا آغاز کریں گے, کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کب ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر یہاں امریکہ آئیں اور پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے امور کو ہی اپنی عملی زندگی کا حصہ کیوں بنایا, اور جغرافی میں ماسٹرز کی جو ڈگری پاکستان سے حاصل کی تھی اس کا کیا موجودہ شعبے سے کسی انداز میں کوئی تعلق بن رہا ہے؟
اوکے, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. بیسیکلی میں 2006 میں ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ میں آئی, اور یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کے درمیان ہی مجھے اپنی یونیورسٹی کے اندر یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں وہاں پہ ایز اے پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ کام کر سکوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو وہاں سے میں نے امریکہ کے اندر اپنی پروفیشنل لائف کا اسٹارٹ کیا. بیسیکلی پاکستان کے اندر بھی میں کالج لیول پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکی تھی, تو ایڈمیشن اور ایڈوائزنگ اور کاؤنسلنگ ٹو دا اسٹوڈنٹ واز آلریڈی مائی پیشن. تو جب یہاں پہ مجھے اپرچونیٹی دی گئی اور مجھے پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا, تو آہستہ آہستہ میں نے اسی شعبے کو اپنا پروفیشن بھی بنا لیا. اور جہاں تک کوسچن یہ ہے کہ جغرافی نے جو ہے وہ مجھے کس حد تک ہیلپ کیا, تو بیسیکلی ناٹ پرٹیکولرلی جغرافی, کیونکہ جب میں وہاں سے ماسٹرز کی ڈگری لے کے امریکہ میں آئی ہوں تو یہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے, کیونکہ وہاں پہ بھی میں اسی شعبے میں کام کر رہی تھی تو میں نے مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ نظر آیا, تو میں آگے ایم بی اے کے شعبے کو ہی میں نے اپنایا اور پھر اسی کے طور پہ میں نے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا شروع کیا.
اچھا, تو بیسیکلی آپ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد یہاں پر آئی تھیں؟
جی بالکل, جی بالکل, ابھی شادی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں یہاں پہ ہائر اسٹڈیز کے لیے میں اور میرے ہسبینڈ دونوں یہاں پہ آئے تھے.
اچھا, دونوں آئے تھے.
جی جی.
تو کیسا رہا دونوں نے جب اکٹھے ہی یہاں پر پڑھنا شروع کیا, دونوں نے ایک ہی کالج میں یا الگ الگ؟
جی بالکل ایسا ہی تھا. بہت ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا کہ ہم پاکستان میں چونکہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے تھے, دونوں کی اپنی اپنی پروفیشنل لائف اسٹارٹ ہو چکی تھی, تو اس کے بعد دوبارہ سے ان سب چیزوں کو ختم کر کے اور اسٹوڈنٹ کے طور پر دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا واز ناٹ دیٹ مچ ایزی, لیکن ہم لوگوں نے جو ہے وہ بہت اسٹرگل کی. اور جب یہاں امیرکا میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یو ایس اے مینس ناٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا, اٹ مینس یو اسٹارٹس اگین. تو بیسیکلی اس فارمولے پہ رہتے ہوئے ہم نے یہاں پہ دوبارہ سے مطلب اپنی اسٹڈیز کو اسٹارٹ کیا اور پھر اپنے پروفیشنل کیریئر کو اسٹارٹ کیا. تو بیسیکلی وہ ایک اسٹرگل تھی, لیکن بہت ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ بہت ایزی لگا یہ سارا سلسلہ ہمیں طے کرنے میں.
تو 2006 سے اب ہو گیا 2016, اور ان 10 سالوں میں آپ کی جو گھریلو ٹیم ہے وہ اس میں بھی توسیع ہو گئی, تو ان بچوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہیں, تو کچھ بتائیے کہ کیسا تجربہ رہا یہ کہ ایک تو ملک نیا, پھر لائف سٹائل نیا, پھر ایک ذمہ داریاں ایک دم سے بچوں کی بھی ساتھ ساتھ نبھائیں, تو خاص طور پر آپ کو کیا چیز یعنی سب سے بڑے مسائل آپ کو کیا پیش آئے اور ان کو پھر آپ نے کس طرح ٹیکل کیا؟
بیسیکلی جب یہاں پہ میں نے ایجوکیشن اپنی اسٹارٹ کی تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں جو تھے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے تھے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ساتھ میں جو ہے وہ اپنی بچوں کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گروتھ ہوتی چلی گئی. تو اصل میں اس میں فیملی سپورٹ نے مجھے بہت ہیلپ کی. ہسبینڈ جو تھے وہ بہت سپورٹیو تھے, اس کے علاوہ میری جو باقی فیملی میں سے میرے برادر اور ان کی فیملی یہاں پہ موجود تھی انہوں نے کافی سپورٹ کیا, اور اس کی بیس پر جو ہے یہ سب میرے لیے ایزی ہوتا چلا گیا.
ایزی ہوتا چلا گیا. تو آپ لکی تھیں کہ پہلے سے آپ کو یہاں پر لوگ موجود تھے جو آپ کا ساتھ مختلف مراحل میں دیتے رہے. تو یہ تو تھی آپ کی زندگی کا وہ سفر جو آپ نے امریکہ میں شروع کیا تھا 2006 سے, اور 2016 تک آپ آ گئیں, اور اس دوران آپ نے اور جگہ بھی کام کیا, لیکن خاص طور پر آپ نے یہ جو امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت نمایاں ہیں. تو آپ کے کالج کی بھی بات کریں گے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات بھی کریں گے جو کہ آپ کا شعبہ ہے, لیکن سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو اگر مختصراً بتا دیں کہ امریکہ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں کے تعلیمی نظام سے مختلف ہے اور کس طرح ان سے ملتا جلتا ہے, خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے.
جی بالکل, امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم سب سے پہلے جو میں ایکسپلین آپ کو یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت ہائیلی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. یہاں پہ ہر اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشنل پالیسیز کو اسکول اور یونیورسٹیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں, ایز لانگ ایز جو پالیسیز ہیں وہ وائلیٹ نہ کرتی ہوں یو ایس کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل لا سے. سو بیسیکلی یہاں پہ جو یو ایس ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے باقی ایجوکیشن سسٹم سے, کیونکہ اگر آپ اور کنٹریز کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ایجوکیشن سسٹم کو, جبکہ امریکہ کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے, اور یہی بیسک فرق آپ کو پاکستان اور یو ایس کی ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائی اسکول فنش کرنے کے بعد ان کے پاس دو آپشنس موجود ہوتی ہیں کہ یا تو وہ کالج کمیونٹی کالج سے اپنی ٹو ایئرس کی ڈگری لیں, یا تو پھر وہ ڈائریکٹ بیچلرز کی ڈگری جو ہے وہ یونیورسٹی سے حاصل کریں. تو بہت سے امریکہ کے اندر پرائیویٹ اسکول ہیں اور بہت سے امریکہ کے اندر اسٹیٹ اسکول ہیں. آلموسٹ ٹوٹل نمبر آف یونیورسٹیز ان امریکہ از 4,000, جس میں سے 50% جو ہے وہ ریشو پرائیویٹ اسکولس کی ہے. ہمارا کالج جو امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے. سو بیسیکلی کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے سرٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 years کی کمیونٹی کالج سے ڈگری لیتے ہیں, اور پھر وہ 4 years کی ایجوکیشن بیچلرس ڈگری, اور پھر اس کے بعد وہ ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
تو اس تمام ان تمام مراحل میں جو ان کی کالجز ہیں اور جو ان کی یونیورسٹیز ہیں ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟
फंडिंग जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट फंडिंग यहाँ पे दी जाती है कॉलेजेस को, और गवर्नमेंट फंडिंग देने के लिए कॉलेजेस को जो गवर्नमेंट के हैं वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें से मेन क्राइटेरिया जो है वो होता है कि स्कूल को एक्रीडेटेड होना चाहिए. यहाँ पे दो मेन बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्रीडेशन बॉडीज को लुक आफ्टर करती हैं, जिनकी बेस पे स्कूल को एक्रीडेशन दी जाती है, और उस एक्रीडेशन की बेस पे स्कूल को फेडरल फंडिंग जो है वो दी जाती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट देता है.
यानी एक्रीडेशन से मुराद ये है कि उनको मुस्तनद करना कि आया वो इस काबिल हैं, उन मायार पर पूरे उतरते हैं जो कि गवर्नमेंट का मायार है किसी भी इदारे को, तालीमी इदारे को चलाने का.
जी बिल्कुल, जी अच्छा. बिल्कुल, उनका डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जो भी आपकी एक्रीडेशन बॉडीज होती हैं जहाँ से आप लेना चाहते हैं एक्रीडिटेशन, उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं और स्कूल्स को उन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरना होता है. अब जो एक्रीडेशन है वो भी यहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके, जिसमें नेशनल एक्रीडेशन है, जिसमें रीजनल एक्रीडेशन है, और जिसमें प्रोफेशनल एक्रीडेशन है. सो इन तीनों एक्रीडेशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, और स्टूडेंट्स को स्कूल्स को उन क्राइटेरियाज पे पूरा करना पड़ता है, तभी उनको एक्रीडिटेशन मिलती है, और फिर एक्रीडिटेशन की बेस पे गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है.
तो आमतौर पर क्या मायार होते हैं, जो जनरल मायार क्या होते हैं एक्रीडिटेशन के?
बेसिकली उसके अंदर आपका जो कोर्स सिलेबस है वो आपका कितना जो है वो स्ट्रांग है, आप जो कोर्सेज डिफरेंट डिग्री से रिलेटेड जो आप दे रहे हैं वो किस लेवल पे हैं, फिर उनके अंदर क्रेडिट आवर्स जो हैं हर कोर्स, पाकिस्तान के अंदर आप कोर्सेज जो हैं वो पास करते हैं, यहाँ पे हर कोर्स के अंदर क्रेडिट आवर्स होते हैं. उसके अलावा यहाँ पे और बहुत से उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि आपकी जो फैकल्टी है वो किस हद तक क्वालिफाइड है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस हद तक क्वालिफाइड है, और मेन उसमें जो है वो आपका एडमिशन क्राइटेरिया है कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो कितना स्ट्रांग है. अब एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर जो मेन चीज़ है वो डेफिनेटली जीपीए रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जीमैट और जीआरई की रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर जो एक्रीडेशन बॉडी होती है वो स्कूल में आके विजिट करती है, उनके सालाना विजिट्स होते हैं, ईयरली विजिट्स, और उन ईयरली विजिट्स पे वो देखते हैं कि स्कूल की परफॉर्मेंस किस तरह से है, और उन परफॉर्मेंस की बेस पे सेल्फ एनालिसिस की बेस पे फिर उनको एक्रीडिटेशन दी जाती है.
अच्छा, तो सारे जो कॉलेजेस हैं आमतौर पर उनके दाखिलों का तरीका एक जैसा ही होता है?
एडमिशन्स रिक्वायरमेंट जो है वो तमाम स्कूल की, अगर आप 90-20 का अगर डिफरेंस देखें तो वो मौजूद है, क्योंकि हर स्कूल का जीपीए रिक्वायरमेंट होता है. कुछ स्कूल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्रीडिटेशन जो है वो डिफरेंट लेवल्स की होती है, नेशनल एंड रीजनल. सो नेशनल जो है वो मोस्टली जो नए स्कूल्स होते हैं वो सबसे पहले नेशनल एक्रीडिटेशन की तरफ जाते हैं, और जब वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल कर लेते हैं तो वो फिर रीजनल एक्रीडिटेशन की तरफ जाते हैं. तो रीजनल एक्रीडिटेशन जो है वो थोड़ा बड़े पैमाने की एक्रीडेशन है. तो डेफिनेटली जो स्कूल अमेरिका के अंदर रीजनली एक्रीडेटेड होते हैं उनका एडमिशन क्राइटेरिया नेशनल एक्रीडेटेड स्कूल के मुकाबले में थोड़ा सा हाई होता है. अब उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि नेशनल एक्रीडेशन स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में जीआरई और जीमैट रिक्वायरमेंट नहीं होती एडमिशन्स के लिए, लेकिन रीजनली एक्रीडेटेड स्कूल के अंदर जीमैट और जीआरई की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी होती है. तो इट्स ऑल डिपेंड्स के स्कूल की एक्रीडेशन जो है वो किस लेवल पे है, और उसकी बेस पे उनका एडमिशन्स क्राइटेरिया सेटअप
मुख्तलिफ होता है. अच्छा, और ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका में हायर एजुकेशन स्कूल आप बार बार कह रही हैं, तो हमारे पाकिस्तान में आमतौर पर स्कूल से मुराद गालिबन यही लेते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर स्कूल जो है कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को भी कहा जाता है.
जी बिल्कुल, तो बिग डिफरेंस यहाँ पे यूनिवर्सिटी को, यहाँ पे कॉलेज को, यहाँ पे स्कूल को, सबको स्कूल ही कहा जाता है. अब बेसिकली हमारा जो जिस कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन डायरेक्टर हूँ, तो आपने नाम से देखा होगा कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. सो इट्स अ कॉलेज ओनली विद द नेम, लेकिन अगर आप एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स लेवल की एजुकेशन दी जाती है. तो इट्स अ नॉर्मल कल्चर इन अमेरिका कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में हर ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल के नाम से कहा बुलाया जाता है,
तालीमी इदारे को. अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि भाई बहुत महंगी है अमेरिका में तो तालीम, और जब कोई तालिब इल्म किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलता है तो उस पर कर्ज का खासा बोझ होता है, जिसे उतारने में उसे खासा बड़ा अरसा लग जाता है, जिस वजह से उसे जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसको शुरू करने में भी खासी दुश्वारी का सामना होता है. तो क्या ये ज़रूरी है कि हर तालिबे लोन ले और फिर पढ़े?
बेसिकली यहाँ पे फेडरल फंडिंग का जो सिलसिला है वो बहुत कॉमन है, जो कि बहुत हद तक ये पाकिस्तान से डिफरेंट भी है. यहाँ का निज़ाम तालीम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को फेडरल फंडिंग लेनी पड़ती है, और फेडरल फंडिंग के बाद डेफिनेटली जब आप डिग्री को फिनिश करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जो है वो बहुत जल्द प्लेसमेंट को ढूंढना पड़ता है ताकि आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर का आगाज कर सकें और फिर इन फंड्स को उतार सकें. तो इस हवाले से अगर मैं अपने कॉलेज का मतलब ऐड करना चाहूँ इन्फॉर्मेशन, तो
हम आपकी तालीम आपके इदारे की तो एजुकेशन का जो भी आपकी फैसिलिटीज है उनका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम जनरल बात कर लें कि अगर कोई तालिबे इल्म बगैर लोन के पढ़ना चाहे तो वो क्या करेगा. क्या उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते कि उसे लोन लेना पड़ता है, या उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी हेल्प नहीं करते, या लाजमी है कि लोन लेकर पढ़ते हैं यहाँ पर?
नहीं, यहाँ पे बहुत से और सिस्टम भी हैं. जो मेन कॉमन सिस्टम जो यहाँ पे है कि यहाँ पे आप जब आपकी चिल्ड्रंस होते हैं तो बहुत उनकी कम एज से यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम मुहैया हैं जिसके तहत आप एजुकेशन के लिए स्टूडेंट की मनी सेपरेट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन मोस्टली जो कल्चर है यहाँ पे वो यही है कि फेडरल फंडिंग को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है, और फेडरल फंडिंग के तहत ही यहाँ पे एजुकेशन लेने का ज़्यादा जो है वो सिस्टम मौजूद है.
लेकिन जो जो स्कूल की एजुकेशन है यानी 12वें ग्रेड तक एजुकेशन यहाँ पर फ्री है,
यहाँ तक फ्री है जी. अच्छा,
उसके बाद एकदम से बोझ पड़ता है और फिर सारा खर्चा जितना भी बचत होती है वो सब लग जाती है. वालदेन भी अगर सपोर्ट करें तो उनका भी सारा बजट जो है वो उनकी बच्चों की तालीम पर खर्च हो सकता है, या फिर बच्चे भी लोन लेकर जिसे बहुत अरसा बाद में चुकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ का जो प्रैक्टिकल हिस्सा है वो ज़रा शुरू होने में बाज़ों का देर भी हो जाती है.
अब हम बात पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हर स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं. तो जो मेन यहाँ की एजुकेशन के अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो है मेरिट स्कॉलरशिप. अगर आपकी जो एजुकेशनल कैरियर थ्रू आउट हाई स्कूल बहुत अच्छा रहा है और आपकी कम्युनिटी सर्विसेज को बहुत देखा जाता है कि आपने कितनी कम्युनिटी सर्विसेज में पार्टिसिपेशन की है, तो बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है. फिर हर स्कूल के अंदर क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं स्कॉलरशिप देने के. बहुत सी जगह पे इकोनॉमिक हार्डशिप की भी स्कॉलरशिप दी जाती है. तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है, तो सिर्फ ये कहा नहीं जाता, ये कंट्री एक्चुअल में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. यहाँ पे हर इंसान को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं कि वो अपनी एजुकेशन को जो है वो बेहतरीन तरीके से करे और फिर बाद में अपनी प्रोफेशनल कैरियर का भी आगाज करे.
अच्छा, तो और यहाँ पर हमने ये भी देखा और सुना भी कि इंडिविजुअल लोग भी अगर कोई तालिबे इल्म पढ़ना चाहे तो उसकी सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसा भी होता है?
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी.
हाँ, तो अगर किसी यूथ ने, किसी बच्चे ने कॉलेज में दाखला ले लिया, यूनिवर्सिटी में दाखला ले लिया, तो उसके लिए राहें किसी ना किसी अंदाज में खुलती चली जाती हैं और वो वहाँ से डिग्री लेकर ही आमतौर पर निकलता है. और वरना अगर वो दरमियान में चाहे तो वो छोड़ देता है, जॉब करता है, पैसे इकट्ठे करता है और फिर पढ़ता है.
फिर पड़ता है. और एक चीज़ जो मेन चीज़ मैं यहाँ की एक और आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि यहाँ की एजुकेशन जो है वो रिसर्च बेस्ड रियल टाइम एजुकेशन है. स्टूडेंट्स आर नॉट फोर्स टू स्टिक टू द बुक्स ओनली. उनको प्रोफेसर मोटिवेट करते हैं कि वो रियल टाइम सिनेरियोस को अपनी स्टडीज़ का हिस्सा बनाएं. और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एग्ज़ाम्स भी दिए जाते हैं वो भी पार्शली एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं. तो जब आप यहाँ की एजुकेशन का और कंट्रीज एजुकेशन के साथ कंपेरिजन करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ थ्योरेटिकल एजुकेशन कम दी जाती है और प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाइल एजुकेशन इंटर्नशिप करने का जो सिलसिला है वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा है. कुछ इंटर्नशिप्स यहाँ पे ऐसी होती हैं जो कि पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, और उन पेड इंटर्नशिप्स की बेस पर स्टूडेंट जो है वो अपने तालीमी अखराजात जो हैं वो पूरा करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जिनकी बेस पे वो अपना एजुकेशन कैरियर बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो
जारी रख
रखते हैं. जी बिल्कुल.
बेहद शुक्रिया फाखरा तबस्सुम अब्बासी साहिबा, बड़ी रवानी से आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत मुख्तसर वक्त में समेट दिया, और हम तवक्को करेंगे कि आपकी ये जो मालूमात है उससे हमारे बहुत से जो तालिबे इल्म इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं अमेरिका के तालीमी निज़ाम के बारे में کافی ان کو معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی. ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو بریک کے بعد ہم بات کریں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی, جو کہ آپ کا شعبہ ہے, جن کی عمر کی آپ ماہر ہیں, اور بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کی رہنمائی میں اپنی تعلیمی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. تو لیجیے پہلے ایک بریک.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب پاکستانی امریکیوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کا کوئی پیغام لا سکتے ہیں. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا کی ڈائریکٹر ایڈمیشنز فاخرہ تبسم عباسی. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی, جنہوں نے امریکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا, اسی شعبے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنانے کے بعد ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا سے. ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی فاخرہ تبسم عباسی صاحبہ, بات کریں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو دنیا بھر سے یہاں امریکہ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ کس کس قسم کے ویزے کے ساتھ امریکہ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے.
اوکے, بیسیکلی یہاں پہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کنٹریز سے یہاں پہ آتے ہیں ایجوکیشن لینے کے لیے, اور اس جو ویزا جس کے تحت وہ یہاں پہ آتے ہیں اسے F1 ویزا کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ پاکستان, انڈیا, یورپین کنٹریز, جتنے بھی افریقن کنٹریز ہیں وہاں سے آپ امریکن ایمبیسی میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ F1 ویزا اپلائی کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ آپ امریکہ میں آتے ہیں ہائر ایجوکیشن کرنے کے لیے. اس کا جو سیکنڈ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں ڈفرینٹ ویزاز پر موجود ہوتے ہیں, جس میں ڈپلومیٹ ویزا ہے, جس میں ورک ویزا ہے, جس میں ایکسچینج پروگرام ویزاز ہیں, جس میں وزٹر ویزاز ہیں. ان تمام ویزاز سے بہت سے لوگ کنورٹ کر کے F1 ویزا پہ آتے ہیں اور پھر یہاں پہ اپنی ہائر اسٹڈیز کو اسٹارٹ کرتے ہیں.
اچھا, تو انہیں اپلائی کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کتنا عرصہ پہلے اگر کوئی پاکستان میں ہے اور وہ سوچے کہ وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کتنا عرصہ پہلے وہ اپلائی کرنے کا سوچے, اور کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اپلائی کرنے کے بعد یہاں یونیورسٹی تک پہنچنے میں یا کالج تک پہنچنے میں؟
اوکے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس اسکول میں جانا چاہ رہا ہے. اگر اس لحاظ سے مطلب میں ڈفرینٹ اسکولس کا حوالہ دوں, تو جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہر اسکول کا جو ایڈمیشنز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب جیسے کچھ اسکولز ہیں جہاں پہ ایڈمیشنز ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے جی میٹ اور جی آر ای کرنا ہے, اور پھر لینگویج پروفیشنسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ٹوفل اینڈ آئلس کرنا ہے. تو جب آپ اسکول کے ساتھ कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान से और वो आपको बताते हैं कि हमें GMAT, GRE और TOEFL और IELTS चाहिए, तो डेफिनेटली इसकी प्रिपरेशन में स्टूडेंट को कुछ टाइम लगता है. लेकिन जब वो डन हो जाते हैं तो उसमें एडमिशन्स प्रोसेस आपका 1 महीने से 2 महीने के दरमियान में कंप्लीट हो जाता है. एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट्स कहलाता है I-20, जो कि यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट को भेजा जाता है और उसकी बेस पे वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिकन एम्बेसी से इंटरव्यू की डेट लेते हैं और फिर वहाँ पे वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं. तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि 1 to 2 months का प्रोसेस जो है वो उनको चाहिए होता है एक एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करने में.
अच्छा, तो इस दौरान आपने ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको भी यहाँ पर ग्रांट्स या स्कॉलरशिप्स मिल सकता है?
जी बिल्कुल, उसमें डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट क्राइटेरिया है. उनको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे मैं इसमें कोट करना चाहूँगी इंडिया की, कि इंडिया में एजुकेशन लोन वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देती है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस करते हैं और यहाँ से I-20 मिलने के बाद वो वहाँ पे अपने कंट्री के अंदर एजुकेशन लोन जो है वो गवर्नमेंट से लेते हैं और वो लोन लेके वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं. डेफिनेटली ये सिस्टम पाकिस्तान में भी मौजूद है. जो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट को फंडिंग देता है, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस स्कूल में स्टूडेंट जा रहे हैं वो एक्रेडिटेड स्कूल होना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल एक सर्टिफाइड और एक्रेडिटेड स्कूल होगा तो फिर गवर्नमेंट को भी ये यकीन होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी फास्ट होती है, जिसकी बेस पे उनको फाइनेंशियल फंडिंग रिटर्न करने में आसानी रहती है. तो बेसिकली एक तो वो एजुकेशनल लोन अपनी कंट्री से ले सकते हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट स्कूल्स में यहाँ पे आते हैं तो हर स्कूल के अंदर मेरिट स्कॉलरशिप मौजूद होती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मौजूद होती है. डिफरेंट स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन स्कूल पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस की जाती हैं.
अच्छा, तो और वो तालीम के दौरान काम भी कर सकते हैं?
तालीम के दौरान यहाँ के रूल के मुताबिक आप अपने स्कूल के अंदर, अगर आप F1 स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल के अंदर आपको पार्ट टाइम 20 आवर्स के लिए परमिशन दी जाती है कि आप अपने स्कूल के अंदर काम कर सकें. और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन यहाँ पे OPT दी जाती है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें गवर्नमेंट आपको एक OPT कार्ड जो है वो देते हैं, जिसके तहत आप अमेरिका में किसी भी जगह पर जॉब कर सकते हैं.
अच्छा, तो इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर यहाँ पर एक बार आ जाए तो उसके लिए भी उसी तरह रास्ते खुलते चले जाते हैं जिस तरह के यहाँ के मकामी स्टूडेंट्स के लिए रास्ते खुलते हैं. अच्छा, लेकिन ये कि जो ख़ासतौर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी एशिया के स्टूडेंट्स की, उनको यहाँ पर आकर जो कल्चरल और सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस किस्म के पेश आते हैं और वो उनसे कैसे निपटते हैं, या इदारा उनकी किस तरह से मदद करता है कि वो अपने सोशल और कल्चरल मसाइल से बेहतर तौर पर निपट सकें?
जी बिल्कुल, जब आप डिफरेंट कंट्री से आते हैं तो अब आप जस्ट देख लें कि पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएंगे तो आपको कितना डिफरेंस जो है वो मिलता है. तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो डेफिनेटली आपको बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ता है. यहाँ पे बहुत से स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग सेशन होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो किस तरह से कल्चरल डिफरेंसेस को कम कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे उनको स्टडीज़ के साथ साथ उनको प्रोफेशनल तौर पे उनको इन्हेंस करने के लिए डिफरेंट जॉब फेयर्स किए जाते हैं, डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं. तो बेसिकली इस कंट्री के अंदर मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिसमें वो अपने कल्चरल डिफरेंसेस को बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं.
तो आपका ताल्लुक, तो क्योंकि आप एडमिशन डायरेक्टर हैं अपने कॉलेज में और वास्ता आपका पड़ता है, रबता आपका रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या आपने देखती हैं और किस तरह उनको सॉल्व करती हैं, और आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं?
आप बेसिकली सबसे जो मेन चीज़ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट या लोकल स्टूडेंट या कोई भी ट्रांसफ़र स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो डेफिनेटली मेरा मेजर काम है अपने पूरे एडमिशन डिपार्टमेंट की लुक आफ्टर करना कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से रन हो रहा है, उनके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं, उनका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो पेपर वर्क हमारे पास आ रहा है उसको पूरी तरह से इवेलुएट करना, ये تو میری کام سے ریلیٹڈ پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں, لیکن جیسا کہ ڈفرینٹ کنٹری سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو میں نے مین پرابلم دیکھی ہے وہ ڈیفینیٹلی فائنینشیل پرابلم زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو بہت سے لوگ آلریڈی اسٹڈیز کر کے ایک اپنے پروفیشنل کیریئر کو چھوڑ کے دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے سائیکولوجیکلی بھی سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جسٹ اسٹڈیز کرنا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ بہت سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جاب فیئرز ہم کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو ہم بہت گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ جلد سے جلد اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کون سے ایسے شعبے ہیں جو ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں جس میں وہ اگر جانا چاہیں تو وہ جلدی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی میرا کام ان کے ایڈمیشن سے لے کے ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ہیلپ کرنا بھی ہے.
تو یہ ہے آپ کا کام امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی میں, جہاں آپ ایڈمیشنز کی ڈائریکٹر ہیں. تو بات کریں آپ کے کالج کی. سب سے پہلے تو آپ کا کالج ہے کامرس اور ٹیکنالوجی کا, تو کچھ بڑے بڑے نام امریکہ میں کامرس اور ٹیکنالوجی کے اداروں کے کچھ آپ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
جی بالکل, بہت سے کالجز ہیں. اگر میں جو ہے وہ پورے کنٹری کے اندر بات کروں تو یہاں پہ جان ہاپکنز یونیورسٹی ہے جو کہ میڈیکل سے ریلیٹڈ بہت مشہور یونیورسٹی ہے. پھر اگر ہم جارج میسن, ورجینیا ٹیک, جارج واشنگٹن یونیورسٹی, اس کے علاوہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی, سو دیر آر لائک ہنڈریڈ آف یونیورسٹیز ان دس کنٹری جہاں پہ آپ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے کالج کے اندر ایک تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ بہت سے لوگ انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمارے پاس ایجوکیشن لینے کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ آلریڈی ڈفرینٹ اسکولس کے اندر F1 ویزا کے طور پہ آتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ ٹرانسفر کر کے ہمارے کالج میں آتے ہیں.
اچھا, تو کیوں آپ کے کالج میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کے کالج میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو کر آپ کے کالج میں آ جاتے ہیں؟
سو بیسیکلی ایک چیز جو سب سے مین چیز میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے کالج کے اندر کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے ود افورڈیبل ٹیوشن. سو جیسا ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اسٹوڈنٹ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتا ہے اس کو جو بگیسٹ کلچرل ڈفرینس کے بعد جو بگیسٹ پرابلم ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا ٹائم فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا اسکول ہے, کالج, یونیورسٹی ہے جہاں پہ ان کو ٹیوشن جو ہے وہ افورڈیبل ملے, ساتھ میں کوالٹی ایجوکیشن ملے, اسکول ایکریڈیٹڈ ہو, اس کی لوکیشن اچھی ہو. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے کالج کی یہ یونیک بات ہے کہ لوکیشن, ہم لوگ واشنگٹن ڈی سی سے 15 مائلز اوے ہیں, پلس ہمارا جو ٹیوشن ہے وہ بہت افورڈیبل ٹیوشن ہے فار آل انٹرنیشنل اینڈ لوکل اسٹوڈنٹ. سو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے.
افورڈیبل سے کیا مراد آپ کی؟ کتنا ڈفرینس ہے عام ایک کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کے مقابلے میں آپ کے کالج میں کتنا ڈفرینس ہے؟
بہت بہت بگ ڈفرینس ہے. ایک چیز میں تھوڑی سی کالج کی ہسٹری یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ کالج جو ہے وہ فاؤنڈڈ بائی ڈاکٹر ولیم اسکپر جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او ہیں. بیسیکلی ان کی 20 to 25 years لائف جو ہے وہ اکیڈیمکس میں گزری ہے, اور جب انہوں نے اس اسکول کو اوپن کیا ہے تو ان کا جو ویژن اور مشن تھا وہ یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ ایجوکیشن دی جائے, کوالٹی ایجوکیشن افورڈیبل ٹیوشن پہ, تاکہ جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہو کے جائیں تو ان کے اوپر فنڈنگ جو ہے فائنینشیل فنڈنگ اور لونز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں تاکہ وہ پروفیشنل کیریئر میں آگے جا سکیں اور ان کے اوپر ڈیتھ اور لون جو ہے وہ کم ہو. سو یہی مین ویژن تھا ہمارے اسکول کا. تو اگر آپ کمپیریزن کریں ہمارے اسکول کی فیس کا اور اسکولس کے ساتھ تو آپ کو بگ ڈفرینس نظر آئے گا. اس میں میں اپنے ایسوسیٹ ڈگری اور بیچلرز ڈگری کی فیس ڈیفینیٹلی انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں پر کورس فی جو ہے بیچلرز اینڈ ایسوسیٹ کی وہ $700 ہے, جس کو آپ اگر کمپیریزن کریں کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے جو کہ ایک چھوٹے لیول کا پرائیویٹ اسکول ہے, تو آپ کو بہت ڈفرینس نظر آئے گا کیونکہ یہاں کسی بھی اسکول میں بیچلرز لیول پہ آپ کو فی 1200 اور 1300 سے کم نہیں ملے گی, جبکہ امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی کی یہ یونیک بات ہے کہ یہاں پہ $700 پر کورس فار بیچلرز ڈگری आर ऑफरिंग.
वाह, तो ये सबसे पहली बुनियादी चीज़ है जो जो मसला है आप स्टूडेंट्स का, खासतौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये मसला आप लोग हल करते हैं. तो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपके यहाँ?
बेसिकली हम लोगों के यहाँ एसोसिएट डिग्री ऑफर की जाती है, बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री. अब बैचलर्स डिग्री हम लोग बैचलर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग ऑफर कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम. फिर उसके बाद हमारे यहाँ मास्टर्स लेवल की एजुकेशन दी जाती है जिसमें मास्टर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये प्रोग्राम है एंड साथ में एसोसिएट डिग्री की भी क्लासेस यहाँ पे दी जाती हैं.
अच्छा, तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में इस वक्त?
हमारे मोर देन 1500 स्टूडेंट्स.
और आपका एक कैंपस कैलिफोर्निया में भी है?
जी बिल्कुल, रिसेंटली ईयर अगो हम लोगों ने नया कैंपस स्टार्ट किया है, कैलिफोर्निया अल्हम्ब्रा कैंपस.
अच्छा, तो आपके कॉलेज में दाखिले का प्रोसेस क्या है?
हमारे कॉलेज में दाखिले का प्रोसेस ये है कि हम एजुकेशन जो GPA रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि कितना स्टूडेंट ने बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो कहाँ से किस स्कूल से पाकिस्तान में हासिल किया है. बेसिकली हम लोग एक्रो एज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हम चेक करते हैं कि जो भी स्कूल एक्रो एज की लिस्ट में पाकिस्तानी स्कूल्स के नाम हैं उन स्टूडेंट को हम यहाँ पे एडमिशन देते हैं. प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट TOEFL एंड IELTS के साथ एडमिशन लेते हैं. प्लस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसमें स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फॉर्म जो है वो हमें प्रोवाइड करना होता है ताकि हम ये देख सकें कि स्टूडेंट फाइनेंशियली तौर पे कितना स्टेबल है और यहाँ पे आके किस तरह से अपने एजुकेशन के एक्सपेंसेस को कवर अप कर सकते हैं.
और उसके लिए आपके स्कॉलरशिप्स भी उनको दिए जाते हैं बाद में?
जी बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप दी जाती है, इकोनॉमिक हार्डशिप स्कॉलरशिप दी जाती है, मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है. तो उसमें मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात अपने स्कूल के हवाले से मेंशन करना चाहूँगी कि अभी आप एवरीबडी नोज के लास्ट ईयर जो नेपाल में अर्थक्वेक आया तो उसकी बेस पे हमारे स्कूल ने स्पेशल इकोनॉमिक हार्डशिप स्कॉलरशिप जो है वो नेपाल के स्टूडेंट के लिए ऑफ़र की, जिसके तहत हमने उनको 50% ट्यूशन में डिस्काउंट दिया ताकि जो उन लोगों का एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द कंट्री सिचुएशन. सो इस तरह की डिफरेंट स्कॉलरशिप जो हैं वो कॉलेज में ऑफ़र की जा रही.
अच्छा, तो ये तो हुआ ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ आकर पढ़ना चाहें और वो पढ़ने की कोशिश करें तो आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन डिग्रीज़ का भी बड़ा रुझान बढ़ रहा है, तो क्या आपका कॉलेज भी, आपका जो इंस्टीट्यूट है इस सिलसिले में कोई डिग्रीज़ फराहम करता है ऑनलाइन, खासतौर पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे ये?
जी बिल्कुल, ऑनलाइन एजुकेशन हर स्कूल का क्राइटेरिया जो है उसके लिए डिफरेंट है. अगर आप पर्टिकुलरली ACCT अमेरिकन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन हमारी फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री लेना चाहता है तो 50% कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन 50% कोर्सेज उसको कैंपस में आके करने होते हैं. अब स्टूडेंट डेफिनेटली उसके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि अगर 50% हम करते हैं और 50% हम नहीं कर पाते तो वो मतलब एक बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम है. तो बेसिकली उसमें एक मेन चीज़ जो हमने देखी है पास्ट में भी कि जब आप किसी स्कूल से 50% एजुकेशन ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और एम्बेसी में जाते हैं तो आपके चांसेस फॉर गेटिंग वीज़ा इज़ हायर देन अ नॉर्मल स्टूडेंट जिसके पास कोई भी क्रेडिट मौजूद नहीं होते. तो बेसिकली हमारे स्कूल में आप 50% डिग्री जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं.
अच्छा, और इन डिग्रीज को हासिल करने के बाद यहाँ अमरीका में या दुनिया भर में किसी भी जगह रोज़गार हासिल करने के क्या मौके होते हैं, खासतौर पर आपके इंस्टीट्यूट से?
बेसिकली जैसा कि मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में आपको ये बताया कि एक्रीडेशन एंड सर्टिफिकेशन इज़ द मेन की फॉर एनी स्कूल इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो जब भी कोई स्टूडेंट इंटरनेशनली ऑनलाइन डिग्री लेना चाहे तो उसको सबसे पहले स्कूल के बारे में ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि स्कूल जो है वो एक्रीडेटेड है कि नहीं. अगर स्कूल एक्रीडेटेड है और वो डिग्री लेता है तो डेफिनेटली हर जगह पे उसके लिए रोजगार के मौके एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होते हैं. स्पेशली अगर आपके पास एक अमेरिकन डिग्री है और आप पाकिस्तान में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हर जगह आपको उसका प्लस पॉइंट मिलता है. लेकिन उसमें मेन चीज़ यही है कि आपका स्कूल जो है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से. ऑनलाइन एजुकेशन के लिए या कि ऑनलाइन वो हमसे दाखला मतलब
ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दाखला
ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस है जिसमें वो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मौजूद है जहाँ पे वो अपना लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड बना के ऑनलाइन एप्लीकेशन और तमाम डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से हम उनको एडमिशन प्रोसेस करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं.
तो ऑनलाइन लिंक बता दीजिए इस वक्त अगर आपको याद है तो.
जी जी बिल्कुल www.acct.edu that's our main university website. और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट थिंग आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नजर आएगी. आप उसको क्लिक करें और उसके बाद वन बाय वन वो आपको स्टेप्स बताएंगे कि आप कैसे अपना लॉग इन उसमें क्रिएट करके कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हैं.
अच्छा, बाला शरीफ मियां वाली से सफदर ईसा का सवाल था कि उन्होंने MIT से सन 2015 में डिग्री ली है और अब वो MPhil करना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन हासिल कर सकते हैं?
अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम की इक्वलेंसी है वो अमेरिकन एजुकेशन की इक्वलेंसी किस तरह से उसमें इक्वलेंसी आती है. तो जब आप पाकिस्तान से 2 years का बैचलर्स और फिर 2 years का मास्टर्स करते हैं और अगर आप किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आपकी वो एजुकेशन इज इक्वलन टू अ बैचलर्स डिग्री. तो आप सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स डिग्री के अंदर. अगर ये साहब जिन्होंने आपने बताया कि वो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं और MPhil करना चाहते हैं अमेरिका से, तो सबसे पहले मास्टर्स करने के बाद उन्हें यहाँ पे मास्टर्स करना पड़ेगा और मास्टर्स करने के बाद वो MPhil कर सकते हैं.
नहीं, उन्होंने पूछा डिस्टेंस एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन.
जी, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी वो डायरेक्ट MPhil में नहीं जा सकेंगे.
अच्छा.
अगर उनके पास मास्टर्स डिग्री है फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि मास्टर्स डिग्री इक्वलन टू अ बैचलर्स डिग्री इन अमेरिका, तो सबसे पहले वो ऑनलाइन तौर पे मास्टर्स में एडमिशन लेंगे और फिर उसके बाद वो MPhil कर सकते हैं.
सही है. चित्राल से समीउल्लाह ने पूछा है कि क्या अमरीकी यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान के फेडरल एरियाज के लिए कोई खास कोटा है?
That depends on different school. Usually तो कोटा सिस्टम अमेरिका में नहीं है. आप जो भी आप के पास क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी अपनी जो जो कुछ भी आपने किया है उसी की बेस पे एडमिशन दिया जाता है. कोटा सिस्टम नहीं है अमेरिका के अंदर.
मोहम्मद इलियास ने दीर से सुबह खैबर पख्तूनख्वा से पूछा है कि मैंने MEd इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन किया है, क्या मुझे PhD में दाखिला मिल सकता है?
अगेन वही मैं बात करना चाहूँगी कि MEd करने के बाद जो है वो सबसे पहले उनको यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन मैं दो मेन आपको नाम बताऊँगी, ECE एंड WES. वेस्ट से पहले उनको इवैल्यूएशन करवानी होती है. इवैल्यूएशन करवाने के बाद वो आपको ये बताएंगे कि आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स के स्टैंडर्ड के बराबर है कि नहीं अकॉर्डिंग टू US स्टैंडर्ड. अगर वो मास्टर्स के बराबर है देन ओनली ही कैन अप्लाई फॉर डॉक्टरेट. तो ये एक खास चीज़ है जो कि इवैल्यूएशन के बाद ही आपको बताई जा सकेगी कि आर यू क्वालिफाइंग टू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री और नॉट.
अच्छा, ये जहांगीर सरगाना सराय खानेवाल सिद्धू से पूछा था, इनका नाम जहांगीर है गालिबन, अगर कोई तालिब मैट्रिक के बाद अमेरिका में तालीम हासिल करना चाहे तो उसे क्या करना होगा?
बेसिकली अगर मैट्रिक के बाद यहाँ पे कोई स्टूडेंट आना चाहे बैचलर्स डिग्री करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल तासुर ये है कि हाई स्कूल आपका मैट्रिक पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के अंदर हाई स्कूल मींस 12 years ऑफ एजुकेशन. तो आप यहाँ वहाँ से 10th करके यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जिसका क्राइटेरिया वेरी टफ है यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एडमिशन इन टू हायर लेवल, यहाँ पे स्कूल लेवल एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज रियली टफ. तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि 2 years मोर एजुकेशन वो पाकिस्तान में हासिल करके फिर वो यहाँ पे किसी भी कॉलेज में बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
तो ये सारी मालूमात हैं हमारे फेसबुक के जो हमारे लिसनर्स ने सवालात पोस्ट किए, बल्कि कुछ और भी सवालात थे, लेकिन एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं करना चाहूँगी कि ऑनलाइन अप्लाई करते हुए स्कॉलरशिप्स के हवाले से कभी फ्रॉड भी हो जाते हैं, तो किस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है?
डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये चीज़ मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल की स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी एक्रीडेशन, उसकी रिकग्निशन और उसकी सर्टिफिकेशन. सो डेफिनेटली उसके लिए आप जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ रबते में रहते हैं. यहाँ पे ऑनलाइन आपको तमाम इन्फॉर्मेशन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है. तो उस पर जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं उसी पे डेफिनेटली कॉल करके, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि एक स्कूल अमेरिका के अंदर मौजूद है तो आप ये समझें कि वो सब सही होगा, जब तक कि आप, और फिर एक मेन चीज़ ये है कि जब आप स्कूल की एक्रीडेशन देखते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एक्रीडेशन है आप उसकी वेबसाइट पे जाके सबसे पहले स्कूल का नाम वहाँ से ढूंढें. अगर उसकी लिस्ट में स्कूल का नाम मौजूद है तो देन यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड पे द फी.
बाज़ औक़ात फ़ाखरा स्पेलिंग थोड़े से फ़र्क के साथ मौजूद होते हैं और उनसे भी घपला हो जाता है, तो आप ये भी हमारे सुनने वालों को बताइए कि ज़रा स्पेलिंग पर ख़ुसूसी तवज्जो दें कि असल कॉलेज में और जो नकली कॉलेज है उसमें.
जी बिल्कुल, उसकी जो मेन उसका आसान तरीका यही है कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जब भी आप किसी भी एक्रीडेशन बॉडी में जाके उस स्कूल का नाम मालूम करना चाहें तो हमेशा स्कूल के साथ वहाँ का वेबसाइट लिंक मौजूद होता है, तो आपको डेफिनेटली डबल चेक करके ही ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंट एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए.
अच्छा, अब आएंगे आपके कॉमर्स और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन की तरफ कि आप ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि इसकी रोज़गार के हवाले से आजकल क्या अहमियत और स्कोप है.
स्पेशली अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूंगी तो यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देखें तो हमारी जो प्लेसमेंट रेशो है वो इस टाइम 82% है, जो कि यहाँ के किसी भी स्कूल में स्कूल के कंपैरिजन बहुत हाई है. उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे बहुत से जॉब फेयर्स स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र करते हैं. जॉब फेयर्स में हम डिफरेंट लोकल कंपनीज़ को जो है वो बुलाते हैं. हमारी बहुत फेडरल एंड लोकल जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ से हमारे अच्छे स्टूडेंट्स को वो हायर करती हैं. उसके अलावा हम लोग, जैसा कि ये 82% जो आपने रेशो हमारी देखी है, तो हमारे स्टूडेंट इस टाइम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं. वर्ल्ड बैंक में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं. इसके अलावा यहाँ के जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IT की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम काम कर रहे हैं.
अच्छा, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आप पाकिस्तान, यहाँ तो जो कुछ आप कर रही हैं, पाकिस्तान के लिए आपने अब तक क्या किया और अब आप क्या करने वाली हैं?
जी बिल्कुल, बेसिकली यहाँ से अभी हमारे स्कूल की कोलेबोरेशन जो है वो बहुत से इंस्टीट्यूशन के साथ जारी है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हम डिफरेंट स्कूल के साथ कोलेबोरेशन करेंगे और स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी कि वो अपनी एजुकेशन का एक हिस्सा पाकिस्तान से कंप्लीट करके फिर उसको फाइनलाइज करने के लिए वो यहाँ पे हमारे पास आएंगे और फिर उनको फाइनल डिग्री जो है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी से मिलेगी. तो उसके लिए अभी हम बहुत से स्कूल्स के साथ इन टच हैं और हमारी कोलेबोरेशन बहुत नियर फ्यूचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी इंफॉर्मेशन लेटर ऑन स्टूडेंट हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं. उसके अलावा हम लोगों की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में सेमिनार्स वगैरह कर रही हैं, वहाँ पर फ्री सेमिनार्स हो रहे हैं उनके. इसमें एक मैं USEFP का जिक्र करना चाहूँगी, जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, तीन जगहों पर वो सेमिनार्स करते हैं यहाँ के एजुकेशन के हवाले से. तो बेसिकली मेरा नियर फ्यूचर में प्लान है कि मैं खुद भी पाकिस्तान जाके डिफरेंट सेमिनार्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराऊंगी ताकि मैं स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं अपने कॉलेज के हवाले से.
तो अगर जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अगर आपके कॉलेज में दाखिला लेना चाहें तो उनको आप क्या गाइड करेंगी और क्या उनको कुछ देना चाहेंगी इंसेंटिव?
अभी आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं उनको बिगेस्ट इंसेंटिव डेफिनेटली यही देना चाहूँगी कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड एकेडमिक रिसोर्स फ़ी है, अगर स्टूडेंट आपके प्रोग्राम के हवाले से एडमिशन लेना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली उसमें उनको ऑफ देंगे. रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड एकेडमिक रिसोर्स फ़ी जो कि $260 है, एंड प्लस डेफिनेटली वो हमारी वेबसाइट पर जाके, मेरा ईमेल एड्रेस वहाँ पर मौजूद है, fakhra.abbasi@acct.edu, दैट्स माई ईमेल एड्रेस, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं और उनको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आंसर्स हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाए, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम का वो हवाला हमें दे सकते हैं और अब हम उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे कि वो किस तरह से अपना एडमिशन्स क्राइटेरिया कंप्लीट करके और किस तरह से वो वीज़ा के लिए जा सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को ये ऑनर दी कि जो कोई हमारे प्रोग्राम के हवाले से आपके कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश करेगा तो आप उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ करेंगी और बहुत सी दूसरी मराहत भी देंगी। तो ये एक अच्छी ख़बर, और हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं आपका और आपके इदारे का, और हम तवक्को करेंगे कि हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद बहुत से लोगों को न सिर्फ ये कि अमरीका में दाखिला लेने के हवाले से रहनुमाई हासिल होगी बल्कि अमली तौर पर भी उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। अब प्रोग्राम के ख़त्म होने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रहा, लेकिन हम आपसे एक सवाल ज़रूर करेंगे कि इतने बहुत से काम आपने किए, तो अगर हम आपसे ये कहें कि उसमें फैमिली सपोर्ट तो आपने कहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका आप इस वक्त जिक्र करना चाहेंगी जिन्होंने आपको मौजूदा मकाम तक लाने में आपकी कोई मदद की, तो आप क्या कहेंगी?
डेफिनेटली उसमें जो एक मेन मेरी ज़िंदगी में जो हिस्सा रहा है वो डेफिनेटली मेरे बड़े भाई का रहा है, जिन्होंने हमें थ्रू आउट गाइड किया कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेके चलना है। बेसिकली ऑलरेडी बड़े भाई यहाँ पे मौजूद थे, वो जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे लिए सब कुछ पहले से मौजूद था कि हमें किस डायरेक्शंस पे चलना है। तो जब आप इस कंट्री में आते हैं और आपको आपकी डायरेक्शंस बताने के लिए कोई मौजूद हो, तो फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान रह जाता है। तो डेफिनेटली मेरी लाइफ के अंदर मेरे भाई और मेरे हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। डेफिनेटली हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर मैं अपना प्रोफेशनल करियर इतने साल आगे नहीं बढ़ा सकती थी, जिसमें साथ साथ बच्चों का भी साथ था। तो मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड, ये तीन जो हैं मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं मेरी लाइफ के अंदर।
तो पाकिस्तान में जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगी, उनकी फैमिलीज़ को, कि वो अपने घर की ख्वातीन को आगे बढ़ाने में किस तरह आपके तजुर्बात से कुछ इस्तफादा कर सकते हैं?
डेफिनेटली जब तक आप ख्वातीन को, जब तक उनको कॉन्फिडेंस अपने घर से नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वो कभी भी प्रोफेशनल कैरियर में जाके अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकेंगी। उसकी मिसाल मैं आपको अपनी दूंगी कि मुझे घर से कॉन्फिडेंस मिला, मुझे हस्बैंड की पूरी सपोर्ट मिली, मुझे अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट मिली, तो उसके साथ मुझे बहुत ईजी रहा कि मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ा सकूँ। तो पाकिस्तान के अंदर भी मैं सब लोगों को यही कहूँगी कि अपनी औरतों को घर से कॉन्फिडेंस दें, ताकि वो आगे जब निकलें तो ये कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनालिटी में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेशनल करियर को जो है वो अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकें।
हाँ, और ना सिर्फ प्रोफेशनल तरीक़ों को बल्कि अपने घराने की ख्वातीन को तालीम की तरफ भी खासतौर पर तवज्जो दें। बहुत से घरानों में अभी तक ख्वातीन की तालीम को मायूस समझा जाता है।
जी बिल्कुल,
तो पहले तालीम और फिर बाद में प्रोफेशन।
प्रोफेशन
और आप बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं, जल्दी से बताइए।
बच्चों को अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे एलिमेंट्री स्कूल में ऑलरेडी जो है वो जाना शुरू हो गए हैं, और जैसा कि अगेन मैं फिर उसमें अपनी सिस्टर इन लॉ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करूंगी कि शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। तो उसकी वजह से मेरे लिए बहुत ईजी रहा कि अगर मैं कभी अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात में थी और कभी बच्चों की कोई प्रॉब्लम हुई तो शी हैंडल इट वेरी वेल। तो एक फैमिली सपोर्ट के बगैर मेरी तरह से आगे निकलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो फैमिली सिस्टम है वो थोड़ा कम होता है। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे भाई की फैमिली की वजह से मुझे इजी रहा थोड़ा आगे बढ़ने में। तो अब ये है कि बच्चे मेरे एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं और उसकी वजह से, और अब चूंकि मैं यहाँ पे एक सुपरवाइज़र की पोजीशन है मेरी, तो मुझे ईजी है अपने स्केड्यूल को मेनटेन करना अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल।
बेहद शुक्रिया फाखरा तबस्सुम अब्बासी साहिबा, हमारे आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ, आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए, आपके इदारे का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने ये ऐलान किया कि जो कोई हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से इस इदारे में दाखिला लेने की कोशिश करेगा उसको आप खुसूसी मराहत देंगे।
बिल्कुल,
आज का प्रोग्राम समेटते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सुनने वालों को बताते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान कौन थी, और हमारे प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी गुलरुख और इंजीनियर थी इम्तियान यास्मीन जमील। को इजाजत दीजिए और ये सुनिए कि हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान कौन थी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान थी अमेरिका ایم کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا کی ڈائریکٹر ایڈمیشنز فاخرہ تبسم عباسی. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی, جنہوں نے امریکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا, اسی شعبے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنانے کے بعد ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameel.voa. ہماری مہمان فاخرہ تبسم عباسی ہمارے ساتھ موجود تھیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا سے. ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.